एक मिनट के लिए जरा कल्पना कीजिए, कोई इंसान किसी डॉक्टर के क्लिनिक में बैठा है। डॉक्टर अपनी मेज पर रखी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान से देखता है और फिर अपना चश्मा उतारकर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि आपके पास जीवित रहने के लिए ठीक 7 दिन बचे हैं। 8 नहीं, 6 नहीं, पूरे 7 दिन। अब इस एक वाक्य के बाद उस इंसान के दिमाग में क्या चलेगा?
एक भयानक सन्नाटा छा जाएगा।
बिल्कुल, सन्नाटा और फिर खौफ का एक ऐसा बवंडर जो उसकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर दे। मतलब घबराहट होगी, चीख पुकार होगी, या शायद जो बचा हुआ वक्त है उसे मुट्ठी में कैद करने की एक पागलपन से भरी कोशिश होगी।
हाँ, और ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, मतलब ह्यूमन नेचर है। जब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल जाता है ना, तब अस्तित्व का सबसे गहरा संकट खड़ा होता है।
सही बात है।
मौत का खौफ सिर्फ शरीर के खत्म होने का खौफ नहीं है, ये उस हर चीज के मिट जाने का खौफ है जिसे हमने अपना मान रखा है, हमारी पहचान, हमारे रिश्ते।
और यही बात हमारे आज के इस गहरे विश्लेषण को इतना प्रासंगिक और रहस्यमयी बनाती है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो इस मौत के खौफ को पूरी तरह से पलट देता है।
एकदम।
आज की हमारी चर्चा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के 7वें और अंतिम दिन यानी सप्तम दिवस के उन ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है जिसके केंद्र में है राजा परीक्षित।
हाँ।
उन्हें भी ना बिल्कुल यही डायग्नोसिस मिला था। तक्षक नाग के दसने से ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन हमारा आज का ये पूरा सफर इसी बात को डिकोड करने के बारे में है कि कैसे एक व्यक्ति मौत के उस अंधेरे खौफ से निकलकर पूर्ण मुक्ति यानी मोक्ष तक का सफर तय करता है।
जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है।
वही तो, जब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हो तो कोई इंसान उस चरम भय को, उस एक्सट्रीम डर को परम शांति में कैसे बदल सकता है?
यही भागवत कथा के 7वें दिन का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है। देखिए, ये सिर्फ एक राजा के मरने की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी मानव चेतना के सबसे बड़े बदलाव की कहानी है। राजा परीक्षित घुटने नहीं टेकते हैं, वो समय को कोसते नहीं हैं और ना ही वो मौत से बचने के लिए किसी तहखाने में छिपते हैं। इसके बजाय वो उस परम सत्य का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हैं।
तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक बदलाव की जड़ों को समझते हैं। राजा परीक्षित के इस भारी बदलाव को समझने के लिए हमें उनके उन 7 दिनों की दिनचर्या को देखना होगा।
सही कहा।
उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया और वो गंगा तट पर बैठ गए सुनने के लिए। शुकदेव जी उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुना रहे हैं। लेकिन यहां मुझे एक बहुत बड़ी वैचारिक उलझन होती है और मैं चाहती हूँ कि आज हम इस पर ध्यान दें।
जरूर, बताइए क्या उलझन है।
देखिए, अगर मुझे पता है कि कुछ ही दिनों में एक जहरीला सांप आकर मेरी जान लेने वाला है तो कोई मुझे कितनी भी अच्छी कहानी क्यों ना सुना ले, मेरे रोंगटे खड़े ही रहेंगे।
हाँ, नेचुरल सी बात है,
है ना। कहानियां सुनना एक तरह का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मतलब ध्यान भटकाने का तरीका। ये तो किसी अच्छी किताब को पढ़कर कुछ पल की शांति पाने जैसा है। लेकिन मौत का असली फिजिकल और साइकोलॉजिकल खौफ सिर्फ कुछ पुरानी कथाएं सुनने से कैसे खत्म हो सकता है, ये बात थोड़ी तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती।
मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, और ये उलझन एकदम जायज है। अगर हम कृष्णा कथाओं को सिर्फ कहानियों या हिस्टोरिकल इवेंट्स के चश्मे से देखेंगे ना, तो ये वाकई एक डिस्ट्रैक्शन ही लगेगा। लेकिन शुकदेव जी जो कर रहे थे वो कोई साधारण स्टोरी टेलिंग सेशन नहीं था, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल सर्जरी कर रहे थे।
सर्जरी मतलब दिमाग के स्तर पर?
हाँ, एक तरह से राजा परीक्षित की पहचान यानी उनकी आइडेंटिटी को बदलने की सर्जरी। अब देखो, डर का मूल कारण क्या होता है? डर हमेशा मैं और मेरे से जुड़ा होता है।
अच्छा,
मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मेरा साम्राज्य छिन जाएगा। शुकदेव जी की कथाओं ने धीरे धीरे उस मैं के ढांचे को ही तोड़ना शुरू कर दिया।
तो मतलब ये एक तरह का कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग था। राजा परीक्षित के दिमाग में जो मैं एक राजा हूं वाली छवि थी उसे मिटाया जा रहा था।
एकदम सटीक। जब शुकदेव जी ईश्वर की सर्वव्यापकता और उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं तो वो असल में ये समझा रहे होते हैं कि जो भौतिक शरीर हमें अपना लगता है वो एक नश्वर आवरण से ज्यादा कुछ नहीं है,
एक टेम्पररी कवर है।
बिल्कुल। और इस सत्य को आप केवल सूखे तर्कों से या लॉजिक से नहीं पा जा सकते, इसे पहचानने के लिए प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण की जरूरत होती है। जब कोई जीव उस विराट ईश्वरीय सत्ता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है ना, तो उसका वो कठोर अहंकार पिघलने लगता है। परीक्षित धीरे धीरे ये महसूस करने लगे कि वो शरीर है ही नहीं जिसे तक्षकनाग दसने वाला है।
अरे वाह,
वो तो वो शाश्वत चेतना है जिसे कोई जहर मार ही नहीं सकता।
ओहो, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। अगर इंसान खुद को शरीर मानना ही छोड़ दे तो मौत का हथियार ही पोथरा हो जाता है। मौत डराएगी किसे जब मरने वाला मैं ही गायब हो चुका है। मौत का भय मिटता है तब इंसान अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखता है। अगर परीक्षित का अपने शरीर से ही मोह भंग हो गया तो उनका इस दुनिया से रिश्ता भी तो पूरी तरह बदल गया होगा।
बिल्कुल बदला। और यहीं पर ज्ञान की एक बहुत ही खूबसूरत धारा फूटती है। जब इंसान के भीतर से कंट्रोल करने की और भोगने की इच्छा खत्म हो जाती है तो उसे पूरी सृष्टि, पूरा नेचर एक गुरु की तरह दिखाई देने लगता है।
अच्छा।
हाँ, और भागवत के 11वें स्कंध में इसी वैचारिक बदलाव को अवधूत दत्तात्रेय और उनके 24 गुरुओं की कथा के माध्यम से समझाया गया है।
24 गुरु?
हाँ, दत्तात्रेय जी ने किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी प्रकृति को अपना गुरु मान लिया था।
ये वाला हिस्सा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आकर्षक लगा, लेकिन मैं इसको सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहती कि उन्होंने पृथ्वी से ये सीखा और आकाश से वो सीखा। आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। जैसे उन्होंने पृथ्वी को अपना गुरु माना और उससे धैर्य यानी पेशेंस सीखा। अब एक मरने वाले इंसान के लिए पृथ्वी कैसे गुरु बन सकती है?
इसे ऐसे सोचिए, पृथ्वी के साथ इंसान क्या कुछ नहीं करता। हम उसे रौंदते हैं, खादाने खोदते हैं, उस पर बम गिराते हैं, उसे प्रदूषित करते हैं।
हाँ, लगातार नुकसान पहुंचाते हैं।
लेकिन पृथ्वी बदले में क्या करती है? वो पलटकर वार नहीं करती। वो उन सबको भी अन्न और आश्रय देती है जो उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं।
बिना किसी शर्त के।
बिल्कुल। राजा परीक्षित के लिए, जो कुछ ही समय में अपना सब कुछ छोड़ने वाले हैं, पृथ्वी का ये बिना शर्त सहनशीलता और धैर्य का गुण एक बहुत बड़ा सबक है। ये सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हों, अपने मूल स्वभाव और अपनी स्थिरता को नहीं खोना चाहिए।
वाह, और एक गुरु जिसका जिक्र आता है स्रोतों में वो है मधुमक्खी।
हाँ, मधुमक्खी।
हाँ, ये तो मानो आधुनिक समाज के चेहरे पर एक तमाचे जैसा लगता है मुझे। अगर हम मधुमक्खी को एक मेटाफर के तौर पर देखें तो ये आज के हमारे हसल कल्चर और पैसा इकट्ठा करने की सनक का सीधा सीधा चित्रण है।
एकदम सटीक तुलना की आपने,
है ना? हम इंसान क्या करते हैं? हम 60-70 साल तक दिन रात एक करके 80-80 घंटे काम करके अपना एक साम्राज्य बनाते हैं। बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पोर्टफोलियो, बिल्कुल उस मधुमक्खी की तरह जो बूंद बूंद करके शहद इकट्ठा करती है और एक बड़ा सा छत्ता बनाती है।
और फिर एक दिन कोई और आता है।
हाँ, कोई और आता है, चाहे वो वक्त हो, मौत हो या कोई भालू हो जंगल में, और वो एक झटके में उस पूरे छत्ते को तहस नहस कर देता है और सारा शहद ले जाता है।
सही कहा।
मधुमक्खी अपने ही लालच और उस ओवर एक्यूमुलेशन की आदत के कारण सब कुछ गवा बैठती है। दत्तात्रेय जी ने उस मधुमक्खी से यही सीखा कि जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना ही विनाश का कारण बनता है।
और यही बात इस पूरे प्रसंग को इतना गहरा बनाती है। देखिए, प्रकृति ना तो अच्छी है ना बुरी है, वो सिर्फ एक आईना है। एक साधारण इंसान मधुमक्खी को देखकर शायद डर जाए कि वो डंक मार देगी या लालच में उसका शहद चुराने की सोचे, लेकिन एक निर्मल दृष्टि वाला व्यक्ति जिसका अहंकार मिट चुका है, वही उसी मधुमक्खी में जीवन की नश्वरता का एक बहुत बड़ा फिलॉसफी देख लेता है।
क्या बात है।
वक्त के इतने करीब खड़े राजा परीक्षित जब ये सब सुनते हैं ना, तो वो संसार से चिढ़ने या भागने के बजाय हर एक तत्व में ईश्वर का और शिक्षा का रूप देखने लगते हैं।
ये एक बहुत ही अद्भुत पैराडाइम शिफ्ट है, पूरा नजरिया ही बदल गया। लेकिन यहाँ कहानी का कैनवस सिर्फ परीक्षित तक सीमित नहीं रहता।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
राजा परीक्षित तो मौत के जरिए इस संसार से विदा लेने वाले थे, लेकिन जो दुनिया उनके पीछे छूट रही थी वो एक बहुत ही भयंकर और अंधकारमय युग की दहलीज पर खड़ी थी, कलयुग। इन स्रोतों में कलयुग का जो चित्रण किया गया है वो आज की हमारी रियलिटी से इतना मेल खाता है कि कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
हाँ, कलयुग को भागवत में एक ऐसे युग के रूप में बताया गया है जहाँ धर्म, सत्य, करुणा और तपस्या, ये जो चारों स्तंभ हैं, ये बहुत कमजोर पड़ जाते हैं।
बहुत कमजोर।
ये एक ऐसा समय है जहाँ मटीरियलिज्म या भौतिकवाद अपने चरम पर होता है और इंसान की इंटरनल पीस, उसकी आंतरिक शांति, पूरी तरह से छीन जाती है।
सब कुछ सिर्फ पैसे और पावर के इर्द गिर्द घूमने लगता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास या पैराडॉक्स नजर आता है इन स्रोतों में।
कैसा विरोधाभास?
देखिए, एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि कलयुग सबसे भ्रष्ट, सबसे अशांत और सबसे पतित युग है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दावा किया गया है कि इसी कलयुग में मोक्ष पाना सबसे आसान है।
हाँ, ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है।
कहा गया है कि जो फल पिछले युगों में हजारों साल की तपस्या से मिलता था, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन यानी ईश्वर के नाम का कीर्तन और स्मरण करने मात्र से मिल जाता है।
सही पढ़ा आपने।
तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये कोई मजाक है? जिस पीढ़ी का नैतिक पतन सबसे ज्यादा हुआ है, उसे मोक्ष का इतना सस्ता और आसान रास्ता क्यों दे दिया गया?
ये एक बहुत ही तीखा और विचार करने लायक प्रश्न है। इसे अक्सर लोग एक छूट या एक स्पिरिचुअल डिस्काउंट की तरह देखते हैं।
हाँ, वही तो लगता है।
लेकिन साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल नजरिए से ये कुछ और ही है।
जी।
इसे एक ऐसी दवा के रूप में देखना चाहिए जो एक खास बीमारी के लिए ही बनाई गई है।
अब सोचिए, सत्ययुग या त्रेता युग के लोगों के पास क्या था?
क्या था?
उनके पास असीम धैर्य था, गजब की एकाग्रता थी। वो एक ही स्थान पर बैठकर सैकड़ों वर्षों तक अपने मन को शून्य में टिका सकते थे। फोकस उनका कमाल का था।
हाँ, क्योंकि उनके पास वो मानसिक शांति थी।
आज के इंसान को अगर 5 मिनट बिना स्मार्टफोन के कमरे में बिठा दिया जाए तो उसे पसीने छूटने लगते हैं।
ओह, बिल्कुल। और यही कलयुग की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, हमारा ओवरथिंकिंग से भरा, हमेशा भागता हुआ, बहुत ही चंचल मन। हमारा अटेंशन स्पैन लगभग खत्म हो चुका है। हम लगातार एंग्जाइटी और शोरगुल में जीते हैं। अब ऐसे बीमार और अशांत मन वाले इंसान से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हिमालय पर जाकर ध्यान लगाएगा या कोई कॉम्प्लेक्स वैदिक कर्मा कांड करेगा।
वो तो 2 दिन में भाग आएगा।
हाँ, वो बीच में ही टूट जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संकीर्तन है यानी बार बार ईश्वर का नाम जपना या गाना, वो केवल एक रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, बल्कि वो एक तरह का कॉग्निटिव डिस्ट्रप्शन है।
वाह, आपने इसे बिल्कुल सही शब्दों में पिरोया ने। कॉग्निटिव डिस्ट्रप्शन ही है ये। जब मन बहुत ज्यादा शोर से भरा हो ना, तो उसे शांत करने के लिए एक दूसरे प्रकार के लेकिन बहुत ही मधुर और पावरफुल ध्वनि की जरूरत होती है।
अच्छा,
मंत्र या नाम जपने का जो रिदम है, वो सीधे हमारे उस ओवरथिंकिंग वाले दिमाग को बाईपास कर देता है। संगीत, ध्वनि और प्रेम, ये तीनों मिलकर एक ऐसे एंकर का काम करते हैं जो इस कलयुग के बिखरे हुए इंसान को तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में और ईश्वर के प्रति फोकस कर देते हैं।
ये बहुत लॉजिक वाली बात है,
है ना? तो ये सस्ता या आसान नहीं है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक है जिसे खास तौर पर एक बहुत ही कमजोर और डिस्ट्रैक्टेड पीढ़ी के लिए डिजाइन किया गया है।
ये विश्लेषण वाकई आंखें खोलने वाला है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ताले के लिए एक बहुत ही सरल सी मास्टर की बना दी गई हो।
एकदम सही।
तो अब भविष्य के इस कलयुग के लिए समाधान सुरक्षित करने के बाद कथा अपने उस अंतिम चरण पर पहुंचती है जिसका पिछले 7 दिनों से, या कहूं तो हर सांस के साथ इंतजार था।
7वां दिन।
हाँ, 7वां दिन आ गया।
वो क्षण जब मृत्यु सचमुच दरवाजे पर खड़ी थी। सुखदेव जी अपना आखिरी उपदेश देते हैं और परीक्षित को याद दिलाते हैं कि जो कुछ भी भौतिक था, जो भी फिजिकल था, वो यहीं रह जाएगा। जो सत्य है वो तुम्हारी चेतना है, जो अब मुक्त होने के लिए तैयार है।
और यहाँ इस कहानी का वो हिस्सा आता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा झकझोड़ दिया। अगर हम आज के मॉडर्न समाज की बात करें तो हम मौत को कैसे देखते हैं?
हम तो डरते हैं उससे।
हम उसे एक हार मानते हैं। मॉडर्न बायो एथिक्स या मेडिकल साइंस मौत से आखिरी सांस तक लड़ने में विश्वास रखता है, चाहे इंसान को वेंटिलेटर पर क्यों ना रखना पड़े। हम मौत को एक ऐसी दीवार मानते हैं जिसे हर कीमत पर टाला जाना चाहिए।
हाँ, डेथ को डीले करना हमारा गोल बन गया है।
जाती है और हीरो बच जाता है। लेकिन राजा परीक्षित की इस कहानी में ऐसा कोई जादुई बचाव नहीं हुआ।
ये इस पूरे आख्यान का सबसे यथार्थवादी यानी सबसे कठोर सच है। तक्षक नाग आया, उसने अपना काम किया, जहर ने राजा परीक्षित के शरीर को जलाकर राख कर दिया। भागवत यहाँ कोई झूठा दिलासा नहीं बेचती भी। अगर आप बहुत बड़े भक्त हैं तो आपका शरीर अमर हो जाएगा। शरीर तो नेचर का हिस्सा है और वो नष्ट होगा ही।
लेकिन जो चमत्कार हुआ वो शरीर के बचने का नहीं था, बल्कि मौत की पूरी डेफिनेशन के बदल जाने का था।
बिल्कुल।
परीक्षित ने मौत से लड़ने की कोशिश नहीं की, उन्होंने एक रैडिकल एक्सेप्टेंस, पूर्ण स्वीकृति के साथ उसे गले लगाया। जब तक्षक ने उन्हें डसा उस वक्त वो गहरे ध्यान में थे। उनका शरीर जल रहा था लेकिन उनकी चेतना, उनका मैं पहले ही उस शरीर से बाहर निकलकर परम सत्ता में विलीन हो चुका था।
यही तो मोक्ष है। उन्होंने मौत को हराया नहीं बल्कि उन्होंने मौत के आइडिया को ही बेमानी साबित कर दिया।
वाह।
शुरुआत में जो मौत एक खौफनाक अंत लग रही थी, एक ऐसी दीवार लग रही थी जिससे टकरा कर सब खत्म हो जाता है, परीक्षित की उस वैचारिक और आध्यात्मिक यात्रा ने उस दीवार को एक खुले दरवाजे में तब्दील कर दिया। मौत आई तो सही लेकिन उसे वहां कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो उससे डरे।
ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। शरीर जला लेकिन डर पहले ही जल चुका था।
सही बात है।
तो अगर हम आज के इस पूरे गहरे अध्ययन के मेन पॉइंट्स को एक धागे में पिरोएं तो ये साफ हो जाता है कि भागवत का ये सातवां दिन किसी के मरने की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये सीखने की कहानी है कि असल में जीना किसे कहते हैं।
एकदम। और ये हमें सिखाता है कि भले ही हम कलयुग के शोरगुल में घिरे हों, भले ही चारों तरफ स्ट्रेस हो, लेकिन हमारे पास आज भी वही मौका है जो राजा परीक्षित के पास था। हमें अपना जीवन ये सोचकर जीना चाहिए कि हर पल ही हमारा सातवां दिन है।
बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ हम इस विचार मंथन को एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ते हैं जो हम सबको अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देगा। देखिए, हमारे पास शायद ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि हमारी जिंदगी के सात दिन कब पूरे होने वाले हैं, लेकिन हमारी घड़ी की टिक टिक भी चल तो रही है ना।
चल तो रही है।
तो सवाल ये है कि इस लिमिटेड टाइम में, इस सीमित समय में हम कैसा जीवन चुन रहे हैं? क्या हम आज भी उस मधुमक्खी की तरह अपना पूरा जीवन सिर्फ चीजें इकट्ठा करने, तिजोरियां भरने और कल की चिंता करने में गवा देंगे, ये जानते हुए भी कि अंत में वो सब यहीं छूट जाना है? या फिर हम उस आकाश की तरह व्यापक और उस जल की तरह निर्मल होने का प्रयास करेंगे? क्या हम उस मृत्यु को एक खौफनाक दीवार बनने देंगे या अभी से उस चेतना की ओर कदम बढ़ाएंगे जो उसे मोक्ष के दरवाजे में बदल सके? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा है।